आगे है रिश्ता आज का, वो भी इसी हिस्से में इसी पे बात हो जाए तो बेहतर है। ससुराली रिश्ते, देखिए कि अल्लाह ताला ने आपके मेरे लिए जो भी ससुराल ढूंढा, अल्लाह ने जो हमारे नसीब में रखा हमें मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह की नेमत है, शुक्र है अल्लाह का, कोई आया तो हमें ले गया ना, वरना हमें कौन लेकर जाता। दो रिश्तों का जिक्र आयत 54 में, नसब और सहर। नसब से मुराद रिश्तेदारियाँ, बाप या माँ की तरफ से। सहर क्या है? कराबतमंदी, जो शादी के बाद बीवी की तरफ से हो, जिसको हमारी ज़ुबान में ससुराली रिश्ते कहा जाता है। याद रखिए कि ये रिश्तों की उन पांच बड़ी अकसाम में से है जिसके साथ लफ्ज़ सिला रहमी आता है। अगर ये इस साल हम रिश्तों जोड़ने की बात कर रहे हैं तो सिला रहमी इसमें भी आएगी, और वो कैसे आएगी इसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए। आप देखिए कि जब एक घर की बुनियाद पड़ती है ना, वो वक्त बड़ा नाजुक होता है। मैंने अक्सर शादी के दरसों में ये जुमला बोला है कि आप अपने घर के आंगन में से एक बड़ा खूबसूरत पौधा, जिस पर बड़े प्यारे प्यारे फूल भी लगे हैं, आपकी दोस्त की फरमाइश पे कि ये फूलों का पौधा मुझे दे दो, मैं अपने बाग में लगा लूँ, आप कहते हैं ले जाओ, और वो वहाँ से मट्टी समेत उठा कर ले के जाएगी ना, अपने घर के आंगन में लगाएगी ना, तो कुछ दिन तक वो पौधा फिर कुमला जाएगा। जैसे एक पौधा दूसरी जगह से जाता है तो कुमला जाता है ना, लेकिन अगर केयर हो, फिर वहाँ मट्टी में पानी में बेहतरी आती जाए तो वो पौधा वहाँ जड़ पकड़ता है। इसी तरह एक बच्ची जब एक घर से दूसरे घर में जाती है तो उसके साथ भी यही कैफियत होती है। लेकिन अगर इस वक्त में शादी के गानों में ससुराल को इसराइल बनाकर पेश कर दिया जाए, और आज हमारे जहनों में देखिए क्या है, दो हदें हैं। एक तो ये कि हम ससुराल की दुश्मनी दिल में डालकर बेटी को ससुराल में भेजते हैं। शादी के गानों में सास और नंद का क्या तसव्वुर है, सास गले की फांस, नंद गली का गंद। ऐसे लगता है लड़की को कि जिस घर में मैं जा रही हूँ ना, वहाँ बस कोई खून पीने वाली कोई खातून मौजूद है। वो बच्चियाँ जो पहले से जहन में ये ले कर जाती हैं कि मैं और मेरा हस्बैंड, मी एंड माई हबी, आपको बताऊँ बाहर के लोग अब हस्बैंड को क्या कहते हैं, हबी, जैसे यूनिवर्सिटी को यूँ नहीं कहते। मैं आपकी काफ़ी इन्फॉर्मेशन बढ़ा रही हूँ, अगर कभी बाहर चले जाएंगे तो अच्छी अच्छी डिक्शनरी बोलिएगा, भाई हबी हबी, बस वो हबी चाहिए, हबी की अम्मी नहीं चाहिए, ये बड़ा इशू है, करें क्या। अब वो अम्मी बेचारी क्या करती, पैदा करती फोत हो जाती, तो फिर इसको पालता कौन, नहीं नहीं पाल के फोत होती। अच्छा फिर पाल के फोत होती तो आपके शौहर की शादी के लाड कौन देखता। मैं पूरे यकीन से कह सकती हूँ एक माँ अपने बेटे की शादी में जिस लाड से दुल्हन के कपड़े और जेवर बनाती है वो कोई खाला मामी फूफियाँ नहीं बना सकती। इज इट ट्रू? उसका तो दिल करता है कि अपने भी जेवर उसको डाल दूँ। दुआ करें कि आप अपने सासों के हाथों ही आए। फिर कहते अच्छा फिर उसी दिन फौत हो जाए जब जेवर बन जाए। अगर वो शादी वाले दिन फौत हो गई तो फिर क्या होगा, नऊज़ु बिल्लाह, आप कहेंगे लो रंग में भंग डल गया, अम्मा को फौत भी होना था तो आज ही हो गई। एक ही रास्ता है कि आप इनके साथ अपना मोहब्बत वाला ख्याल रखें। देखिए हदीस में आता है कि बदगुमानी से बचो, हुस्ने ज़न रखो। इन रिश्तों में जब हुस्ने ज़न नहीं रहता तो बहुत ख़राबी होती है। दूसरी तरफ भी बात बिगड़ती है, लड़की 16 साल की लेकिन तजुर्बा हो 40 साल वाली औरत का, हो वो नाजुक कली फूल जैसी पतली कमर और काम करे सारे घर का, कैसे घर बनेंगे, ये नहीं करना। आप जितना रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस के साथ इस रिश्ते को लेकर चलेंगे बहुत अच्छा होगा, ना तो जाने वालियाँ बहुत हों। अब दूसरी हद भी सुन लीजिए कि आज के दौर में हमारे माशरे में बुत तो नहीं पूजे जाते लेकिन ससुराल पूजे जा रहे हैं। ससुराल नाराज़ हो जाएंगे, मेरी सास अम्मा का मूड ख़राब हो जाएगा, फलां रस्म ना की तो मेरी नंद का मूड बन जाएगा, हमारी तो इज्जत नहीं। और शादी वाले दिन ससुराल वाले वाकई ऐसे आते हैं जैसे कोई डकैती लेन करने आते हैं, पूरे डंके की जोर पे लड़की भी लेके जाएंगे, जहेज के संदूक भी लेकर जाएंगे, गाड़ियां ट्रक भर कर लेकर जाएंगे, और लड़की के माँ बाप ऐसे कांप रहे होते हैं। सारा कुछ करके भी उस दिन लड़की की माँ बाप और भाइयों के रंग उड़े होते हैं कि अल्लाह इज्जत से ये फौज चली जाए वापस, इनको खाना सही मिल जाए, और घर जाकर एक एक बात पर फिर ताने मिलेंगे कि मुझे तो फूलों का हार ही नहीं बनाए, और मैं तो लड़के की माँ थी, मुझे स्टेज पर नहीं बिठाया, और ये कड़े दी हैं, ये तो देखो अंदर से खाली हैं, फूले हुए हैं बस अंदर वजन तो कोई नहीं, ये कपड़े मुझे दिए। तो एक जुमला लिख लीजिए, ये माबूद कभी खुश नहीं होंगे आपसे। पहले अपने ससुराल के लाड करके उनसे काम के ज़िंदगी गुजारी, अब बच्चियों के ससुरालों से, और लड़की की माँ बेचारी हॉस्पिटल पहुँच जाती है और शादी की रस्मों का पटारा तक नहीं ख़त्म होता। ये रिश्ते नेमत हैं, हमने इनको जहमत बना लिया, ये प्यार के रिश्ते हैं। और लड़कियों को पता लग जाए कि हमारी दोस्त की शादी हो रही है और उसकी सास नहीं, कहते यू आर सो लकी यू डोंट हैव मदर इन लॉ, कितनी खुशकिस्मत है तुम्हारी सास नहीं है। ऐसी चीज़ों से रुकने की ज़रूरत है। इन सब को रियलिटी बेस्ड रखिए। जितनी डांट एक माँ अपनी बेटी को देती है, मैं कहती हूँ अगर सास गरीब दे देना तो अखबार में खबरें छप जाएं उसके जुल्म की दास्तानों की। हमारी माएँ तो हमें आज भी डांटती हैं, आपकी नहीं डांटती? सारी दुनिया आपकी तारीफ़ करेगी, तनकीद करेगी तो माँ करेगी, तो उस पर तो बेटी लाड से अदाज से मुस्कुरा के चली जाए, तो अगर सास कुछ कह दे तो आपका मुँह क्यों सूझ जाता है? तो बहरहाल इसमें अफरात और तफरीत है। इज़्ज़त कीजिए, इज़्ज़त लीजिए, इज़्ज़त दीजिए, प्यार कीजिए, प्यार मिलेगा, सब कुछ वापस मिल जाएगा। लेकिन बहरहाल इन रिश्तों को बुनियाद बनाकर अल्लाह को नाराज़ नहीं करना। अल्लाह से ये दुआ कीजिए कि वो आपके मेरे लिए इन रिश्तों को आसान कर दे। एक बड़ी ही दिलचस्प चीज़ जो मेरे ऊपर भी आज ही खुली है, कहते हैं कि लफ्ज़ ससुराल और इससे जो भी रिश्ता बनता है ना उसमें नुक्ता कोई नहीं आता। मसलन लफ्ज़ ये पढ़ के सुना देती हूँ, इंसान का नसब तो इसके वालदैन से चलता है, इसके अलावा इसकी बीवी के हवाले से दूसरे ख़ानदान के साथ भी इसका रिश्ता और ताल्लुक़ जोड़ा जाता है। इस लिहाज से सास और ससुर को भी अल्लाह ने वालदैन जैसा तकद्दस और एहतराम अता किया है। ससुराली रिश्तेदारियाँ अगर न होती तो कबीलों और ख़ानदानों का माशरे में बाहमी रब्त और इख्तलात मुमकिन न होता और हर ख़ानदान एक ख़ानदान दूसरे ख़ानदान से अलग थलग रहता। चुनाचे अल्लाह ताला ने ससुराली रिश्तों का ताना बाना इस तरह बुन रखा है कि इससे नौ इंसानी बाहम मरबूत होती है। ये तो बात समझ आ गई ना, ये आसान है कि रिश्तों से कई ख़ानदान जुड़ते हैं, एक से एक, एक लड़की अकेली नहीं जाती कहीं, पूरा ख़ानदान साथ मिलता है। इसी तरह याद रखिए कोई नेकी अकेली नहीं होती, उसके साथ नेकियों का ख़ानदान होता है। ये दिलचस्प फिगर्स हैं, ऐसे ही सुन लीजिए बस। ससुराली रिश्तेदारों के नामों में नुक्ता नहीं होता। मसा देखिए लफ्ज़ ससुराल कोई नुक्ता नहीं है, ससुर साला साली। हरूफ की दो किस्में हैं, नुक्ते वाले और बिला नुक्ते वाले। बे नुक्ते वाले हरूफ कवी और ताकतवर समझे जाते हैं और नुक्ते वाले हरूफ कमज़ोर और ज़ईफ़ समझे जाते हैं। अब आप गौर करें तो ससुराल ससुर सास साला साली इसमें किसी पर भी नुक्ता नहीं, क्योंकि ये तमाम रिश्ते बहुत मज़बूत और ताकतवर होते हैं, इसलिए दामाद के किसी हरफ पर नुक्ता नहीं है। लफ्ज़ दामाद लिख लो उस पर भी कोई नुक्ता नहीं आता, क्योंकि ये भी शादी के बाद बड़ा कवि हो जाता है, फिर तो गुराने लगता है ना, पता नहीं मैं क्या कर सकता हूँ। भाई क्या कर सकते हो, कर लो, मज़ा आ जाएगा तुम्हें खुद ही। चुनाचे दामाद और सास को जिधर से भी पढ़ेंगे दामाद और सास एक ही रहेंगे। ये तो एक जोक हो गया। यानी दोनों का सीधा तो सीधा है ही, मगर दोनों का उल्टा भी सीधा होता है। इसलिए नरकान खमसा का ख्याल रखें, क्योंकि इसी पर तवालुद व तनासुल की इमारत कायम है। ये एक जस्ट बात थी, इसको आप चाहे तो रखें चाहे छोड़ दें, लेकिन सीखने की बातें क्या हैं, कुरान की आयात से नसीहत लेनी है। अपने रब का रास्ता इख्तियार करना है, अल्लाह की निशानियों पर गौर करके ताल्लुक़ बिल्लाह को मजबूत करना है और कुरान के ज़रिए जिहाद करना है। बोलिए, और कितना मज़ा आएगा आपको इसमें, इसका आप अभी अंदाज़ा भी नहीं कर सकते अगर आपने इसको टेस्ट नहीं किया तो। फिर दीन से बगावत करने वालों की मदद नहीं करनी, रहमान की निशानियों से सबक लेना है और अपना ताल्लुक बिल कुरान चेक करना है। अल्लाह ताला आपको मुझे इसकी तौफीक अता फरमा दे। जितना ज़्यादा आप इस काम में संजीदा होते जाएंगे उतना अल्लाह ताला आपके कामों में बरकत देता जाएगा। और याद रखिए, अगर हमने इस एक रुकू में जितनी बातें डिस्कस की हैं अगर इस पे गौर कर लें तो अल्लाह के हुक्म से इस बारे का हक अदा कर देंगे। ज़रूरत इस बात की है कि हम इस पे गौर व फिक्र करके अपनी ज़िंदगी को लेकर चलें, कुरान को फैलाएँ और ख्वाहिश नफ्स को दबाएँ। ये जुमला लिख लीजिए, कुरान को आम करें, ख्वाहिश को खास कर दें। कभी कभी ख्वाहिशें पूरी करें, बहुत अच्छी बात है, कोई इसमें नुक्स नहीं होता। हर वक्त ही ख्वाहिशों के हरीस नहीं कि जो चाहा खा लिया, जो चाहा पहन लिया। और फरमाया कि अल्लाह के नबी ने कहा कि बहुत सारे लोगों को उनकी ख्वाहिश नफ्स जो है वो जहन्नुम में ले जाएगी। अल्लाह ताला आपको मुझे बचा कर रखे। आगे चलते हैं, आखिरी रुकू है सूरत का, 61 से 77। टॉपिक लिखिए इबादुर रहमान को, गम बीवी बच्चों की हिदायत का होता है। अल्लाह हमें भी ये गम लगा दे और इबादुर रहमान बना दे। बहुत ही प्यारा रुकू है। तबारक अल्लज़ी जाल फिस समा इबरूजं व जाल फीहा सिराजं व क़मरं मुनीरा। बहुत बाबरकत है वो जिसने आसमान में बुर्ज बनाए और इसमें आफ्ताब बनाए और मुनव्वर महताब भी, और इसी ने रात और दिन को एक दूसरे के पीछे आने जाने वाला बनाया। इस शख्स की नसीहत के लिए जो नसीहत हासिल करे या शुक्रगुजारी करने का इरादा हो। इबादुर्रहमान, रहमान के सच्चे बंदे वो हैं जो ज़मीन पर नरमी के साथ चलते हैं, और जब बेइल्म लोग इनसे बातें करने लगते हैं तो वो कह देते हैं कि सलाम। नोट करते जाएं साथ साथ, सारी खूबियाँ आपके सामने हैं। और जब अपने रब के सामने सजदे और क्याम करते हुए रातें गुजार देते हैं, और जो ये दुआ करते हैं कि हमारे परवरदिगार हमसे दोज़ख का अज़ाब दूर ही रखना क्योंकि इसका अज़ाब चिमट जाने वाला है, आमीन तो कह दें। बेशक वो ठहरने और रहने के लिहाज से बदतरीन जगह है। रब्बना सरिफन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा काना गरामा इन्नहा सात मुस्तकर्रन व मुकामा, दिल से कही आमीन। और जो खर्च करते वक्त भी इसराफ करते हैं ना बखीली, बल्कि इन दोनों के दरमियान मोतदिल रास्ते पर खर्च करते हैं, और अल्लाह के साथ किसी दूसरे माबूद को नहीं पुकारते, और किसी ऐसे शख्स को जिसे कत्ल करना अल्लाह ताला ने मना कर दिया हो वो सिवाय हक के कत्ल नहीं करते, ना वो जिना के मुर्तकिब होते हैं, और जो कोई ये काम करे वो अपने ऊपर सख्त वबाल लाएगा, इसे क़यामत के दिन दोहरा अज़ाब दिया जाएगा, और वो ज़िल्लत व ख़्वारी के साथ हमेशा इसी में रहेगा सिवाय इन लोगों के। ये कहते हैं कि कुरान पाक का खूबसूरत मुकाम है तौबा के फ़लसफ़े को समझने का, गौर कीजिएगा। सिवाय इन लोगों के जो तौबा करें और ईमान लाएं और नेक काम करें, ऐसे लोगों के गुनाहों को अल्लाह नेकियों से बदल देता है। अल्लाह हमारे भी सारे गुनाहों को नेकियों में बदल दे। अल्लाह बख्शने वाला और मेहरबानी करने वाला है, और जो शख्स तौबा करे और नेक अमल करे वो तो हकीकतन अल्लाह की तरफ सच्चा रुजू करता है। अल्लाह हमें भी करने वाला बना दे। और जो लोग झूठी गवाही नहीं देते और जब किसी लफ्ज़ चीज़ पर इनका गुजर होता है तो शराफत से गुजर जाते हैं, और जब इनके रब के कलाम की आयतें सुनाई जाती हैं तो अंधे बहरे होकर इन पर नहीं गिरते, और ये दुआ करते हैं कि रब्बना हबलना मिन अज़्वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता अय्युनिम व जालना लिलमुत्तकीन इमामा। ऐ हमारे परवरदिगार, तू हमें हमारी बीवियों और औलाद से आंखों की ठंडक अता फरमा, और हमें परहेजगारों का पेशवा बना। यही वो लोग हैं जिन्हें इनके सब्र के बदले जन्नत के बुलंदोबाला खाने दिए जाएंगे जहां इन्हें दुआ सलाम पहुंचाया जाएगा। आप देखिए कि ये दुआ अपनी जगह बड़ी खूबसूरत दुआ है, जिसमें हम ना सिर्फ ये कि अपने बल्कि अपनी औलादों और अपने साथ वालों के लिए भी दुआएँ करते हैं। मिलेगा क्या, पहले आगे कैसा पढ़ लेते हैं। इसमें ये हमेशा रहेंगे, वो बहुत अच्छी जगह और उम्दा मुकाम है। कह दीजिए कि अगर तुम्हारी दुआ यानी इल्तजा न होती तो मेरा रब तुम्हारी बिल्कुल परवाह न करता। तुम तो झुटला चुके, अब अन करीब इसकी सज़ा तुम्हें चिमट जाने वाली होगी। तो ये थे इबादुर्रहमान। इबादुर्रहमान बनने के लिए अपने अंदर क्या खूबियाँ डालनी है और क्या निकालनी है, इसको चेक लिस्ट के तौर पर सुनिए। क्या मैं बहस बराए बहस तो नहीं करती, तो बहस को तर्क करना है। क्या मसलहत के साथ नरमी और आजजी के साथ ज़मीन पे चलती हूँ, सजदा गुजार हूँ, क्याम में रातें बसर करती हूँ, जहन्नुम के अज़ाब से दूर रखने की दुआएं करती हूँ। फिर इसमें इसराफ की बात हुई, अपने आप से पूछिए क्या मैं इसराफ तो नहीं करती। हदीस में आता है कि जो अफरात तफरीत से बचता है वो कभी फ़कीर और मुख्ताज नहीं होगा, और तीन चार लफ्ज़ों की यह हदीस है। मा आला मन इक्तसित, चार लफ्ज़ हैं, मा आला मन इक्तसित, कभी भी गरीब नहीं होगा जो बीच के रस्ते में रहेगा। बाज़ार की रिवायत में है कि अमीरी में, फ़कीरी में, इबादत में दरमियाना रवी बहुत बेहतर और आसन चीज़ है। मुस्तद अहमद में है कि आपने फरमाया अपनी गुजरान में मियाना रवी करना इंसान की समझदारी की दलील है। इमाम हसन बसरी फरमाते हैं अल्लाह की राह में कितना ही चाहो दो, इसका नाम इसराफ नहीं है। हम इसको इसराफ समझ के थोड़ा सा दे के कहते छोड़ो ना, बहुत दे दिया, अब ज़्यादा तो देना भी नहीं चाहिए। हज़रत अय्यास बिन मुआविया कहते हैं जहाँ कहीं तो हुक्म अल्लाह से आगे बढ़ जाए वही इसराफ है। किसी मामले में आगे नहीं जाना, और कुछ बड़ों की बात कि अल्लाह की नाफरमानी का तो एक रुपया भी खर्च करना इसराफ है। बुखारी की रिवायत, अल्लाह के नबी इब्ने मसूद से ये रिवायत हम तक पहुंची। सवाल किया गया कि सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है, आपने फरमाया तेरा अल्लाह के साथ शिर्क करना। حالانکہ کسی اکیلے نے تجھے پیدا کیا، کہا اس سے کم، فرمایا تیرا اپنی اولاد کو اس خوف سے مار ڈالنا کہ تو اسے کھلائے گا، کہا اچھا اور، فرمایا اپنے پڑوس کی کسی عورت سے بدکاری کرنا، اور یہ ساری ترتیب آپ کو ادھر دکھ رہی ہے۔ اسی طرح آیت 72 کی ایکسپلینیشن میں حدیث ہے صحیح بخاری میں اور مسلم میں، فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ نہ بتاؤں، تین بار آپ نے یہی پوچھا، صحابہ نے کہا جی ضرور، کہا شرک نہ کرنا، ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا۔ اس وقت آپ تکیہ لگائے ہوئے تھے، پھر آپ اس سے الگ ہو کر بیٹھ گئے، جیسے ایسے بیٹھے تھے، اتنی بات کے بعد سیدھے ہو کے کہا، فرمانے لگے سنو سنو جھوٹی گواہی دینا، اور اسے بار بار فرماتے رہے یہاں تک کہ ہم اپنے دل میں کہنے لگے کاش رسول اللہ آپ خاموش ہو جائیں۔ تو سب سے بڑی چیز جو عباد الرحمن کی ہے وہ جھوٹ نہیں بولتے، جھوٹی بات کرنا، جھوٹ کی زندگی بسر کرنا، جھوٹا فکشن، یہ کہانیاں، یہ سچے ایمان والوں کا مزاج ہی نہیں ہوتا۔ آج آپ اپنے آپ سے پوچھئے میری زندگی میں جھوٹ کا ہے؟ جھوٹے قصے کہانیوں کے لیے گھنٹوں تو نہیں لگا دیتی؟ دیکھ لیجئے مستقر اور مقام کی بات ہے۔ کیسے؟ سب سے پہلے آپ دیکھیے کہ اچھے کام کیے دنیا میں، کیا انجام ہوا؟ جنت میں داخلہ، وجہ تھی صبر، جنت میں جاتے ہی سلام اور دعا ہوگی اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں عباد الرحمن میں شامل کر لے۔ آپ دیکھیے کہ سارے ہی اللہ کے بندے ہیں، لیکن جن کو اللہ تعالی خود اپنا بندہ کہہ دے وہ پھر کتنے پیارے ہوں گے اللہ کو۔ ہر ماں کو اپنے بچے سے پیار ہوتا ہے، لیکن جو بچہ زیادہ ہی بات مانے تو ماں کہتی ہے اصل میں تو یہی میرا بنتا ہے۔ اتنا کچھ ہے اس ایک رکوع کے اندر کہ جس کے بارے میں بات کر کر کے بھی خط نہ ہو۔ لیکن ایک حدیث سن لیجئے، آیت 77 میں جو ہم نے بات سنی اس پہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہت سے لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے آئیں گے جن کے پاس بہت کچھ گناہ ہوں گے، پوچھا گیا کہ یہ کون لوگ ہوں گے، فرمایا وہ جن کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے میرے گناہوں پہ پردے ڈال دے۔ پھر آپ دیکھیں کہ اس میں عباد الرحمن کی جو دعا ہے، جو اصل میں آپ کی میری بھی دعا ہے، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بچے، شوہر، بیوی، یہ جو ازواج کا لفظ ہے نا، یہ سپاؤس کے معنوں میں بھی آتا ہے، اقسام کے معنوں میں، یعنی اس میں شوہر کے لیے بیوی اور بیوی کے لیے شوہر بھی ہے۔ اسی طرح ہم میں سے ہر ایک جو اپنے ارد گرد رکھتا ہے ایک دوسرے کو، جیسے آج کل آپ دیکھیں کہ ہمارا آپ کا بہت ماشاء اللہ بہت کئی دفعہ کا ساتھ ہوتا ہے، کئی لوگ دن میں کئی بار ملتے ہیں، کوئی ایک بار ملتے ہیں، تو یہ جو ساتھی ہوتے ہیں نا یہ بھی ازواج میں آتے ہیں۔ ازواج قسموں کو کہتے ہیں بیسیکلی، میں اس کو اس طرح سمجھانا چاہوں گی جیسے لائک مائنڈیڈ۔ ہم ان سب کے لیے یہ دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے ان کو۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ بچے، شوہر، گھر والے، کولیگس، آپ کے ساتھی جن کے ساتھ آپ مزے مزے سے دین کے کام کرتے ہیں، کبھی ہنسی مذاق کرتے ہیں، کبھی کچھ، یہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کب بنیں گے؟ جب آپ ان کو بھاگ بھاگ کے نیکیاں کرتے دیکھیں گے۔ مجھے تو سورۃ توبہ کی وہ آیت یاد آ رہی ہے، یش فی صدور المومنین، کہ اللہ نے کہا کہ میں ایمان والوں کے سینے کب ٹھنڈے کروں گا؟ جب یہ مکہ والے مسلمان ہو جائیں گے۔ تو آپ کی میری خواہش کیا ہونی چاہیے؟ کہ ہم لوگوں کو اسلام پہ لے کر آئیں۔ ویسے بھی آپ دیکھیے کہ آپ کسی کو کوئی اچھا کام کرتا دیکھیں، آنکھوں میں خوشی سے آنسو آتے ہیں نا، جب آنکھوں میں آنسو آئیں گے تو آنکھیں گیلی ہوں گی، اور گیلی چیز ٹھنڈی ہوتی ہے۔ تو اس کا ایک مفہوم بھی کیا ہے کہ ہم اپنے ارد گرد والوں کو وہ نیکیاں کرتے دیکھیں کہ خوشی سے ہماری آنکھوں میں آنسو آئیں اور وہ آنسو ہماری آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے میرے ارد گرد والوں کو بھی یہ ساری دعائیں لگا دے، اور ہم سب کو بھی اس پہ غور و فکر کرنے والا بنا دے۔ اس کے لیے صرف دعائیں نہیں، کوششیں بھی کرنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بچوں کو اور اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کر دین کے کاموں میں لگائے۔ کیا سیکھا؟ زمین پر نرمی سے چلنا ہے، کسی کی سخت بات کا جواب سختی سے نہیں نرمی سے دینا ہے، اپنے رب کے حضور قیام اور سجود میں راتیں بسر کرنی ہے، جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے دعائیں کرنی ہے، اللہ کی بندی بننا ہے، خود بھی اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دینی ہے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے میرے لیے آسان بنا دے۔